जबकि देवताओं को भी भोलेनाथ नहीं कहा जा सकता, जाया हुआ है। सुदामा ने दो मुक्ति अर्थ की थी, उनको बदले में बहुत मेहनत मिली। उन्होंने तो ग्राइंड बना दिया है कृष्ण के लिए, वास्तव में कृष्ण की बात नहीं है, बात है शिव बाबा की। कृष्ण भगवान नहीं है, शिव बाबा ये ऐसा भोला है जो दो मुट्ठी चावल लेकर के विश्व की बात कही दे देते हैं। संगठन की महल, दो मुट्ठी चावल और बदले में महल मिल गए कितने समय के लिए, महल भी कितने समय के लिए मिल गए, संगठन मुक्ति सेवे भी कितने समय के लिए मिल गए, एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्म के लिए। आप बच्चे समझते हैं, बाप आकर के भारतवासियों को बरोबर धीरे जवाहर आकर के नहीं देते, धीरे जवाहर आकर के चैतन्य जवाहर आते, 21 दिनों की तो बात ही नहीं, चैतन्य ही रहे हैं हीरो पाठधारी, अपने अपने रूप में हीरो पाठ बजाने वाली आत्मा है, उनका संगठन उनकी किला बना देती है, यादगार है माला। और ये किसकी है वो अपने देते, बच्चे कहते हैं बाबा ये धन मन धन सब आपका है, ये उनसे आखिरी जनों का तन खड़ा हुआ मन में कोई ताकत नहीं है, चंचल हो चुका है और धन जो विनाशी है, आज है कल नहीं होगा। बच्चे बाबा को दान करते हैं, कहते हैं आपका ही दिया हुआ है, उसको बच्चा पैदा हुआ तो कहते हैं भगवान ने दिया, के लिए भी कहते हैं भगवान ने दिया। अब ये कहने वाले कौन है, तो भक्त है जो श्रेष्ठ चंद्र कहते आए गायन करते आए, लेकिन क्या भगवान ने एक जन्म के लिए दिया, विनाशी दिया या अविनाशी दिया? वास्तव में ये भक्ति मार्ग में गारंटी उन्हीं आत्माओं ने किया है जो पापी, वो है 84 जन्म लेने वाली आत्माएं, आत्म की स्थिति में इसके तो होने वाले जिन्होंने बाप से डायरेक्ट पाया है, भगवान अर्थात बाप ने दिया है। बाप कहते हैं सब कुछ तुमको अब देना होगा, ये वजह में हम तुमको बहुत ब्यूटीफुल धन ट्रांसफर कर देंगे, तो ये पांच तत्वों का तरा हुआ आखिरी जन्म का झूला है, ये भी अगर ईश्वर के प्रति अर्पण कर देंगे तो हम तुमको बहुत ब्यूटीफुल कर देंगे, अपार धन देंगे, लेकिन किसको देंगे, जरूर बच्चों को देंगे, सुप्रीम स्कूल के सुप्रीम स्कूल आत्मा है तो बच्चे भी कैसे चाहिए है? वो सदैव आपकी स्थिति में रहने वाला है तो बच्चे भी कैसे चाहिए, आप भी किस स्थिति में स्थित होने वाले, अगर एक जन्म की कम हो गया तो कहीं भी देव आम की स्थिति में स्थित हो सकता है, क्यों बताया दिया हम तक का तो बाप के साथ वही रह सकेंगे जो पूरे मरे हुए होंगे, कैसे देवान देवान से मरे हमें आपकी स्थिति में पक्के होंगे, तो ऐसी जो आपकी स्थिति में पक्की होने वाली आत्माएं हैं 84 जन्म का पक्का फाउंडेशन डालने वाली, बाप से हम सब तक डायरेक्ट व्यवस्था मिलने वाली बाप तो हमको बेहद का बनता देंगे हद का बनता नहीं देंगे मान लो 20 जन्म का भी मिला तो उसे हद का कहेंगे बेहद का वो भी हद का बेहद मानो पूरे की जन्म का वर्षा पूरे 84 जन्म की प्राप्ति आनंद प्राप्ति जाते ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है भक्ति में होता है आत्मकाल और ज्ञान में होता है सदाकाल धन है तो सुख है धन बिगड़ मनुष्य कितने दुखी होते हैं बच्चे जानते हैं बाबा हमको आहार देते हैं ये खुशी होती है राम में तो सुख की कोई कमी नहीं है हर एक को अपनी अपनी राजधानी है उनको कहा जाता है पवित्र जगह सबको अपनी अपनी राजधानी होगी वहाँ एक राज्य होगा या अनेक राज्य होंगे एक राजा होगा या अनेक राजा होंगे एक राजधानी होगी या अनेक राजधानी होगी यही बताया एक धर्म एक राज्य एक भाषा एक मत एक कुल यहाँ ऐसे क्यों कह दिया वहाँ हर एक को अपनी अपनी राजधानी है उसको कहा जाता है पवित्र ग्रह राजधानी जड़ नहीं ऐसी राजधानी राज माना राजा धानी माना धारणा शक्ति हरेक राजा की अपनी अपनी धारणा शक्ति होगी कहते हैं ईंटों के मकान को घर नहीं कहा जाता इसको कहा जाता है जो गृहिणी है उसी को घर कहा जाता है इतिहास में भी ज्ञान है गृहिणी ग्रहण मुख्य के जो घरवाली है वही ग्रह है तो वहां पर पवित्र ग्रह सार्थम होगा वो पवित्र ग्रह सार्थम ऐसा परिवार होगा जो डाकने के वहां वैसे भी कहते हैं अपने घर का हर एक राजा होता है लेकिन कहते हैं आज में ऐसा तो नहीं अपने घर के बाल बच्चों के ऊपर किसी का राज्य नहीं अपनी गहरी के ऊपर भी पूरा अधिकार किसी का नहीं है तो ये भक्ति मार्ग की बात है सारी इस समय की है जो बाप आकर के ऐसा पवित्र के हिसाब से तैयार करते हैं पवित्र माना प्योरिटी प्योरिटी माना यूनिटी यूनिटी करवाना की थी वाचा की थी और मनता की मन के संकल्पों में भी परिवार में किसी सदस्य के साथ विद्वेष पैदा नहीं हो सकता जो परिवार के मुखिया का संकल्प होगा और पूरे परिवार के सदस्यों का संकल्प होगा तो देखो बाप कितना भोला है लेते क्या है और देते क्या है क्या लेते जो तुम धन अर्पण करते हो अपना तन भी तन कहा जाता है ईश्वर की सेवा में अर्पण किया जाता है बाल बच्चे भी तन ही है तन का अंग है वो अर्पण करते हैं लेकिन जो भी अर्पण करते हैं वो यज्ञ में अर्पण कर होने के बाद ये भी समझते हैं कि हमारे काम के नहीं है एजुकेशन है बाप उन कामों को भी गुण बनाए लेते हैं तो बाप कितना भोला है लेता क्या है कहाँ से लेता है और देता क्या है गुण बना के देता है कितना अच्छा ग्राहक है बाप जो भी बच्चों का दुख आप ग्रह की है, बच्चा पैदा हुआ और सारी नीचे तो उनकी हो जाती है, इनकी बच्चों यहाँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं? सब कहा जाए कि बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पूरी पूरी आत्म स्थिति निश्चित हो जाए, कोई भी देह भाग का नाम निशान न रहे, अपने स्वरूप की स्थिति भी आ जाए, वो है माई और पक्का जिसे कुछ हुआ और बाप का बच्चा बना, वो होते हैं हरि के ग्राहक। और ये बेहद का बाप है भोलानाथ, उसे हरि के बच्चों का ग्राहक। बाप कहते हैं मैं परमधाम से आया हूँ, पुराना सब कुछ तुम से लेकर के नई दुनिया में तुमको सब कुछ दे देगा। हमारा जो भी अपनापन है वो सब कुछ ले लेता हूँ, नई दुनिया में देता हूँ, इसलिए दाता कहा जाता है। और दाता भी जैसा कोई नहीं है, क्योंकि निष्काम सेवा करते हैं। और जो भी देवता है वो सब कामना वाले, जिसका कुछ नहीं होता है, तुम सबको देहदान है, सबको अपना अपना रखे है तो सबको स्वागत है। और जो बाबा को अपना कोई हक अपना रख नहीं है, ये निस्वार्थ सेवा करते हैं, निष्काम सेवा करते हैं। बात कहते हैं मैं निष्कामी हूँ, मेरे को कोई लालसा नहीं है। बच्चों की अनुभव नहीं होता क्या जो बाप को कहना पड़ता है? है बच्चे को 63 जन्म के झुलते हुए पड़े, आत्माओं के संसर्ग संपर्क में आते हुए भक्ति मार्ग में कहते हैं दूध का जड़ा हुआ साठ को भी खूब भूख के पीता है, तो बच्चों को जल्दी विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी कोई पाठधारी हो सकता है कि दुनिया में जो निष्काम सेवाधारी। तो बाप को बार बार कहना पड़ता है बच्चे मैं निष्काम सेवाधारी हूँ, मेरे को कोई लालसा नहीं। ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि बच्चों का काम है कि बूढ़े बाप की संभाल करो, बात आस रहती है बाप को, याद रहती है कि मैं बूढ़ा होऊंगा तो बच्चे मेरी परवरिश करेंगे। यहाँ तो बाप कहते हैं जो बाबा कभी बूढ़ा नहीं होता, जो आदि में होना पड़े, वहां तो कहते हैं हमने तुम्हारी संभाल की है तो तुम हमारी संभाल करना, लालसा रहती है। बाप बूढ़ा हो तो बच्चे उनकी संभाल करें, ये बाप को कभी बूढ़ा नहीं होता है, ये सदैव जवान ही है। जवान बूढ़ा और बच्चा शरीर के आधार पर होता है कि बिना शरीर के होता है? ज्योति बिंदु आत्मा को बूढ़ा जवान और बच्चा कहेंगे कि शरीर हो तब कहेंगे? तो शरीर की बात है तो जरूर वो सुप्रीम कोर्ट को शरीर धारण करके आता है और आकर के पाठ बजाता है, शरीर के द्वारा वो जवान का ही पाठ बजाता है, न पालना लेने वाले बच्चे का पाठ बजाता है और न बूढ़े का पाठ बजाता है। तो देखो आत्मा तो कभी बूढ़ी होती नहीं, खतान कब होती है? जब देवान में होते हैं तब खतान होती है, या आपकी स्थिति निश्चित होते हैं तो खतान होती है, जब देवान में होंगे तो खतान होगी। आत्मा आपकी स्थिति में होगी तो कभी भी खतान नहीं होगी, ये तो जानते हो। लोग तो आप बच्चों में उम्मीद रखते हैं हम पूरा होगा तो बच्चे हमारी सेवा करते, बस सब कुछ बच्चों को दे देते हैं, फिर भी उनकी सेवा तो होती है ना। ये दिवारा कहते हैं मैं हूं ही अभोक्ता, मैं कभी खाता ही नहीं, मैं आता ही हूं सिर्फ बच्चों को नाली देने के। बाबा की पैकेट थी क्या बताई, जो और आत्माओं से वस्तुत नहीं है क्या, और जो भी आत्माएं हैं वो सब भोगी है, भोगता है, भोग किए बगैर रह नहीं सकती। और जो बाबा, जो बाबा अभोगता है, क्या बात, जो बाबा भोगता है और सब आत्माएं भोगी है। मैं तो आता हूँ सिर्फ तो बच्चों को नाली देने के, आता हूँ परम नाम से। ऐसा नहीं होता क्या नौखा लेना कि शिव बाबा की आत्मा कोई अलग से आत्मा नहीं है। ये बैठने की बता दी, विजय धर्म वाले तो यही मानते हैं कि आत्मा ही परमात्मा बन जाती है पूछाते करके, और जैन धर्म की आत्माएं भी तो शक्ति पर है ना, उनके भी बीज तो इधर होंगे ना, एडवांस पार्टी में वो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं भी तो कोई ऐसी है जो इस तरह की बातें सुनाने लग पड़ती है कि उनकी आत्मा अलग नहीं है। राम की आत्मा ही शिव है, तो जैसे जैन धर्म में अलग से शिव को नहीं मानते निराकार को, वो आत्मा को ही परमात्मा का रूप दे देते हैं। शिव बाबा को बुराई दी है, शिव बाबा ने झाड़ में क्या किया, जब झाड़ का चित्र समझाते हैं तो कौन से धर्म को बुराई दी है, सब धर्म है लेकिन बहुत ही धर्म की है, लेकिन जैन धर्म को बुराई दी है। तो ऐसा न हो कि बाबा को बुराई लेनी है, बोलो पड़े जैसे कोई कोई चक्कर को बुराई देते, तो कोई जो जरूर है इन आंखों से देखने में नहीं आता, इन आंखों से साकार देखने में आता है, इन आंखों से आत्मा भी देखने में नहीं आती। तो क्या ना माना जाए, आत्मा के लिए अस्तित्व को मानना पड़ता है और परमात्मा के लिए अस्तित्व को मानना पड़ता है। विशेष पर क्या बताया, शिव बाबा है अभोक्ता और आत्माएं है सब भोगी। सुप्रीम रूह रूहों को बैठ समझाते, ये अभिमानियों को नहीं समझाते, इसको समझाते रूह माने रूहानी स्टेज में जो टिकने वाले हैं उनको समझाते। रूह ही सुनती है, हर एक बात रूह करती है, संस्कार भी रूह ले जाती है जिसके आधार पर शरीर मिल जाता है। यहाँ तो मनुष्यों की अनेक मत है, कोई कहते हैं हम परमात्मा ही है, आत्मा को परमात्मा वो रूह को ही परमात्मा समझ लेते हैं, उनको कुछ भी लिप ठीक नहीं लगता है, उनको समझते रूह को कोई ले स्टेप नहीं लगता, देखते हैं लगाओ अटैचमेंट, जब रूह को कोई ले स्टेप नहीं लगेगा तो आत्मा क्या होगी, परमात्मा को भी संस्करण नहीं लगता और रूह को भी संस्करण न लगे ऐसी स्टेप हो जाए तो आत्मा भी क्या होगी, आत्मा भी परमात्मा होगी। ऐसा नहीं आत्मा निर्लेप कह देते हैं लेकिन आत्मा निर्लेप हो नहीं सकती, अगर आत्मा नहीं होती तो क्यों कहते हैं पाप आत्मा हो गया? जरूर आत्मा को ही पाप का निश्चित लगता है, जरूर आत्मा को ही पुण्य का पाप निश्चित लगता है। पुण्य और पाप आत्मा ही करती, ऐसे नहीं है कहेंगे कि पाप परमात्मा और पुण्य परमात्मा। नहीं, अगर आत्मा नहीं होती तो ऐसे नहीं कहते। तो कहा जाए कि शरीर पुण्य शरीर पाप। अभी तुम जानते हो कि सभी आत्माओं पर रूहानी पाप, हम रूहों को पढ़ाए इस शरीर के द्वारा आत्मा को बुलाते भी हैं। कैसे हमारे बाप की आत्मा आई, कैसी आत्मा, बाप को तो ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप कैसी लेता है, उनको तो अभुक्त है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, आत्मा आती है, कहाँ से विराजमान होती होगी? ब्राह्मणों आदि को खिलाना भारत में काम बात है। आत्मा को बुलाते हैं, उनको पूछते हैं, कई बातें उनकी सच्ची भी निकलती है। ये पित्र आदि खिलाना ये भी ब्राह्मण में भूत है। इन बातों को बंदर में खाना चाहिए, बाप के हर शहर में ब्राह्मण की राज को बदला है। समझानी नहीं की सकते, एक एक बात की समझाने में ही वर्षों लग जाएंगे। बच्चों को बड़ी सहज शिक्षा देगी, जाते भी हे पति को पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। बहन ये नहीं है कि आकर के ज्ञान सुना के चले जाओ फिर हम पावन बनते रहेंगे, नहीं। सच क्या है, आओ और आकर के पक जाओ। जब हम पाप कर लिया, उनका नाम ही है पवित्र पाप। नाम की ताकत से पड़ता है, बिना काम किए कोई का नाम पड़ जाता है क्या? शास्त्रों में जो भी नाम है, जैसा जिसने काम किया वैसे उनके नाम पड़ जाती, उनका नाम ही है पतित पावन। ऐसे क्यों कह दिया उनका नाम है पतित पावन? किसके तन में बैठ करके बोलता है ये वाणी? किसके तन में बैठ कर बोली? ब्रह्मा के तन से बोली, कहा बोली? ममता में बोली, बोलने वाला कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं परम पिता परमात्मा है, वो सुतन से बैठ करके ऐसे क्यों बोलता है कि उनका नाम ही है पतित पावन? ऐसे क्यों नहीं कहता मेरा नाम है पतित पावन? क्यों नहीं बोला? ब्रह्मा के तन से ऐसे क्यों नहीं बोला मेरा नाम है पतित पावन? क्योंकि ब्रह्मा का तन तो पतित से पावन खुद ही नहीं बन सका। संपूर्ण योग की जो उपलब्धि है, कंचन काया सर्प का जिसका मत निशान दिया जाता है, जैसे सर्प अपने घर त्यागता है, सर्प जिंदा रहता है, मर जाता है, जिंदा रहता है, तो ब्रह्मा का तन खुद ही सर्प के निशान नहीं, कंचन काया नहीं बनाए सका, तो दूसरों की कैसे बने? इसलिए ऐसे नहीं कहा कि मेरा नाम ही है पतित पावन। क्या कहा? जो पतित पावन पाठधारी आत्मा परमात्मा का पाठ है, वो उनका मन भविष्य के लिए इशारा करती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकती। क्या जिसकी तरफ इशारा किया उसने जरूर दो आत्माएं हैं, एक सुप्रीम कोर्ट और दूसरा शरीरदारी की आत्मा। तो शरीरदारी की आत्मा जरूर कोई शरीरदारी होगा भविष्य, जिसकी तरफ इशारा किया राम वाली आत्मा। लेकिन राम वाली आत्मा को शंकर नहीं कहा जाता, शंकर किसको कहा जाता है? क्योंकि ब्रह्मा का तन तो पतित से पावन खुद ही नहीं बन सका। संपूर्ण योग की जो उपलब्धि है कैसे बताया, सर्प का जिसका मत निशान दिया जाता है, जैसे सर्प अपने घर त्यागता है, सर्प जिंदा रहता है मर जाता है, तो ब्रह्मा का तन खुद ही सर्प के निकल नई कंचन काया नहीं बनाए सका, तो दूसरों की कैसे बने। इसलिए ऐसे नहीं कहा कि मेरा नाम ही है पतित पावन, क्या कहा, जो पतित पावन पाठधारी आत्मा परमात्मा का पाठ है वो उनका मन भविष्य के लिए इशारा करती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकती, तरफ इशारा किया उसमें जरूर दो आत्माएं हैं, एक सुप्रीम सोल और दूसरा शरीरधारी की आत्मा। तो शरीरधारी की आत्मा जरूर कोई शरीरधारी होगा भविष्य में, जिसकी तरफ इशारा किया राम वाली आत्मा, लेकिन राम वाली आत्मा को शंकर नहीं कहा जाता, शंकर किसको कहा जाता है, शंकर माना मित्र। कौन कौन सी तीन आत्माओं के पास एक शरीर में मित्र हो जाते, एक राम, एक चंद्रमा के रूप में प्रवेश होने वाला कृष्ण और सुप्रीम। तो बताया इन तीनों आत्माओं में पतितों को पावन बनाने वाला कौन है, केवल राम या कृष्ण, शिव बाबा, शिव बाबा का ही नाम लेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन ही कहते, बाप को ही पतित पावन लेकर कहते हैं, कोई है पतितों को पावन बनाने वाला, क्यों, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा को ऐसे नहीं कहेंगे कि वो निर्लेप है, उनको लेपक्षेप नहीं लगता, दुनिया की हर मनुष्य आत्मा को लेपक्षेप लगता है, रंग का रंग लगता है, रंग में उसे भी लगता है और पांच आत्म के ड्रामा में भी लगता है। बाकी शिव बाबा जिसमें प्रवेश है, जिस मुकदर रथ में प्रवेश होता है, उस मुकदर रथ के द्वारा शिव की तो जरूर ऐसा पाठ बजाती है जिनको संग का रंग नहीं लगता, वो संग का रंग लगाएगी लेकिन खुद संग का रंग धारण नहीं कर सकता। तो बाप को पतित पावन लिबरेटर कहते हैं, लिबरेटर लिबरेट करने वाला, मुक्ति दिलाने वाला, कायम मुक्ति दिलाने वाला, दुख और दर्द से मुक्ति दिलाने वाला, शरीर के अनेक प्रकार के दुख होते हैं, धन का भी दुख होता है, धन का भी दुख होता है, और दाना और धन जिनके पास बहुत कुछ है फिर तो उनको मन का दुख होता है। तो हर प्रकार के दुखों से मुक्ति दिलाने वाला शिव बाबा ही है। मनुष्य आत्माएं दुख से छुड़ाए नहीं करती, दुख हरता सुख करता उनको ही कहा जाता है, माने इनको नहीं कहा जाता, इनको मान किसका सिखाया गया, ब्रह्मा ही है, माने ब्रह्मा भगवान का रूप नहीं है, वो है निराकार। क्या उसकी पहचान बताई, एक तो विशेष पहचान बताई या भोक्ता है निराकार, माने ब्रह्मा जी को मैं जब शिव ने प्रवेश किया तो निराकार की स्थिति नहीं थी, जो भी धर्म पिताएं होते हैं धर्म स्थापन करते हैं अपने धर्म के मुखिया कहे जाते हैं तो जरूर निराकार की स्थिति धारण करते हैं, निराकार की स्थिति मान जी को धारण करते हैं, बीच में ही पावर होती है विस्तार करने, जैसे बीज से व्यक्त बन जाता है और ये जो है वैरायटी धर्मों का धार, इसमें अनेक प्रकार के वैरायटी बीज है, लेकिन सुप्रीम बीज वो मंच शक्ति का एक ही बीज है। इसमें परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं मुकर्रम, तो वो है निराकार। माना उसको निराकारी स्टेज में टिकने में कोई टाइम नहीं लगेगा, कोई आप उत्साह विशेष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये है उसकी ओर लगे स्टेज। देवी के मंदिर में जाकर देखो, वहां लिंग रखा हुआ है, क्या देखो वहां लिंग रखा हुआ है, जरूर वो चैतन्य था तब उसकी पूजा होती है। किसी होती है चैतन्य में कोई ने कार्य किया है तब उसकी पूजा होगी, या कोई कार्य नहीं किया उसकी पूजा होगी, जरूर कोई कार्य किया है पूजा होती है। प्योरिटी की प्योरिटी चैतन्य हाथ करेगा या जड़ हाथ करेगा, जरूर कोई चैतन्य है जिसने प्योरिटी को धारण किया है और साधारण प्योरिटी को धारण नहीं किया। देवताओं को सिर्फ कहते हैं पवित्र और शिव बाबा को कहते हैं वो है सिर्फ प्योर देवताएं, और शिव बाबा है एवर प्योर। एवर प्योर सिर्फ कहने के लिए है क्या? सिर्फ कहना बाकी हुआ क्या? उसने किया नहीं, ऐसे ही उसको कहा जाने लगा क्या? ऐसे जरूर शिव बाबा है, उसकी यादगार है, तो उधर प्योरिटी का पाठ बजाया। तो और मनुष्य आत्माएं देव आत्माएं आत्मी आत्माओं की तो बात ही छोड़, जो पाठ देव आत्मा भी नहीं बजा सकती वो पाठ शिव बाबा ने बजाया है, तब उनका यादगार मुझे बना। निराकार की यादगार, निराकारी स्टेज में रहने वाला बनता था, साकार के संसर्ग संपर्क में आता है तो भी निराकार रहता है, तो उनकी पूजा करती है। ये देवता भी कभी चैतन्य थे तब तो उनकी महिमा और पूजा होती है। नेहरू चैतन्य में था तो उनकी स्टेच्यू और फोटो निकाल करके महिमा करते हैं, कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनका जल चित्र बनाई करके महिमा करते हैं, ऐसे की महिमा नहीं करते। तो शिवबाबा भी जरूर चैतन्य में कोई अच्छा कार्य करके गया है तब उसका लिंग मंदिर में यादगार रखा हुआ, लिंग बड़ा और उसमें बिंदु छोटा, बिंदु किसकी यादगार? वो बिंदु ही बिंदु की यादगार है, और जो बड़ा रूप है लिंग वो किसकी यादगार है? वो जरूर कोई ऐसा साकार रूप है बड़ा रूप जो निराकारी स्टेज में सबसे पहले दिखता है, अवसर की ही पूजा होती है। जो उसी को अर्जुन कहा जाता है, अर्जुन अर्थात पहला नंबर, तो उनका जड़ चित्र बनाए मुझे न करती अर्जुन की पूजा करती है। कोई भी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकते, मनुष्य की पूजा क्यों नहीं कर सकते? अरे फूल अर्पण क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मनुष्य तब होते हैं विकारी, इसलिए उनकी पूजा नहीं कर सकते, वो विकार से पैदा होते हैं, उनकी पूजा नहीं हो सकती। पूजा देवताओं की होती है जो सदैव पवित्र होते हैं, वो देवताएं विष से पैदा नहीं होती। देवताएं भी दो प्रकार की, एक संगम में सूक्ष्म मतलब देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा उसकी पूजा की तो बात हो रही, बाकी रहे विष्णु और शंकर, तो विष्णु और शंकर की पूजा होती है, थोड़ा उत्तर है पवित्र होती, वो विषय पैदा नहीं होते। अब कुछ मतलब कोई ऊपर होते हैं या नीचे होते, पुरुष बटन कोई ऊपर हवा में है या नीचे है धरती पर। सूक्ष्म बटन का मतलब ये है स्टेज, सूक्ष्म वाइब्रेशन की स्टेज में रहने वाले जरूर राम सती की आत्माएं और उनकी सहयोगी शक्तियां वो आकारी स्टेज में दिखने वाली होती। साकारी स्वरूप के आधार पर साकारी शरीर लेकर के ही आकारी स्टेज में दिखे। तो उनमें पहला नंबर आता है शंकर, तब तो उनकी दूरी में दिखाया जाता है शंकर को, फिर विष्णु और साकारी दुनिया में भी दिखाते हैं ब्रह्मा। तो वो सूक्ष्म मतलबवादी देवताएं विष्णु से पैदा नहीं होते, माना कन्वी में भी जब उसकी पैदाइश होती है उनको अपने स्मृति की स्मृति आती है तो विषय विचार वाली बात उनकी बुद्धि में नहीं होती, वो ज्ञान से जन्म लेते हैं। मुखवंशा वाली ब्राह्मण बनते हैं, मुखवंशा वाली ब्राह्मण नहीं बनते। ऐसे नहीं किए देह के आकर्षण के आधार पर ब्रह्मा की देह है या ब्रह्मा कुमार कुमार उनकी देह के आकर्षण के आधार पर उनका जन्म होता है, उनको अपने स्वरूप की स्मृति आती है, नहीं। मुखवंशा वाली ब्रह्मा के मुख से जो उन्होंने ज्ञान सुना उस ज्ञान के आधार पर वो अपने स्वरूप को पहचानते, तुम जानते हो अभी बाप आया हुआ है, पहले भी आया हुआ है, फिर अभी कर्म पर आया हुआ स्थापना स्वर्ग की करने के लिए आया हुआ है। आने का मकसद क्या है? ऐसे तो नहीं आया हुआ है ज्ञान सुना के चला जाता है फिर हम स्वर्ग की स्थापना करते रहते हैं, नहीं। के आने का मकसद ज्ञान सुनाना नहीं है, क्या मकसद है? उसका मकसद है स्वर्ग की स्थापना करना, सुख की दुनिया बनाना, द्वार पर शिला बनानी शुरू होगा, शुरू होगा दो पुर, जहाँ दो पुर बनाए दिए जाए राजी करने के लिए, एक पुर में हम राजी करें दूसरे पुर में तुम राजी करो। ये स्थिति कब से शुरू हुई? एका के अंत में जब द्वापर शुरू हुआ तो इस्लाम धर्म का मुखिया इब्राहिम जब से पहले हुआ उसने आकर के भक्ति भक्ति का जो परीक्षण फैलाया उससे देवता भड़क हो गया और दोनों वर्गों में युद्ध हो गया, झगड़ा हो गया, उसे इस्लामी कामी ग्रुप को खड़े करके बाहर तो जब से रावण आते हैं तब से दो कुर्सी हो जाए, दो मतें स्थापन हो जाती है। ऐसी सूची यहाँ नहीं होने देना चाहिए, जो ऐसी सूची के निमित्त बनेंगे उसमें द्वापर और कलयुग में रावण राज्य में ही प्राप्ति ज्यादा करेगी और रावण से प्राप्ति करेंगे, मतलब दूसरे धर्म की आत्माएं साबित हो जाए। रावण राज्य शुरू होने से जाते क्या बनाते हैं? शिव का मंदिर कौन बनाते हैं? कौन बनाते हैं? जो विचारी है वो बनाते हैं या जो अपने विचारी देवताएं होते हैं वो बनाते हैं? जो अपने विचारी देवात्माएं हैं वो जब शिव का मंदिर बनाते हैं। अभी तो टेंशन में वो नारी सुनाई दे कौन वो अभिचारी जाति की स्थापना अभिचारी धर्म की स्थापना करने वाला शिव जिसकी यादगार शिव का मंदिर बनाया द्वापर के आदि में वो अभी टेंशन में नारी सुनाए रहे वो सत्य है। टेंशन में बाद में कहा जाता है पहले टाइम क्या सत्य चित्त और आनंद पहले वो सत्य है सत्य है मन सत्य अल्पकाल का होता है या सदाकाल का होता है सत्य किसको कहेगी दूसरा अल्पकाल चलता है या सत्य अल्पकाल चलता है नाप से विद्यते भावो आकर कभी सदा पानी हो सकता है। और सबसे कलैर है ही है, भले को देखने में ना आए लेकिन कलैर होता है। तो आगाम पार के बनाने वाली कोई आत्मा है जो शक्ति रूपी रंगों पर रंगमंच पर सदैव रहने वाली, उसका सत्य आत्मा में वो सत्य सुप्रीम सोल चित्त और आनंद सोल वो आकर के पाठ बजाता है, ऐसी चीज बनाता है स्थिति उस स्वरूप की, उस आत्मा की जो निराकारी स्टेज वाला है, जो सारे गुरु का बीज है, उनकी महिमा गाते हैं। निराकार को सही तो चाहिए महिमा किसी गाते हैं, महिमा सही होगा तब गाई जाएगी या फिर बिंदु की महिमा गाई जाएगी। शरीर के द्वारा ही प्रोत्साहित किया जाएगा तब तो महिमा गाई जाएगी। तो उनकी महिमा गाते हैं उनको निराकार को शरीर को शरीर को कही तो बात क्या करके किसी को हैवी बनाते हैं, उसे हैवी में राज करने के लिए तुम पोषाज कर रहे हो, स्वर्ग तुम बन रहे हो, बन रहे हो वहां शरीर छोड़ के अगले जन्म में बनेंगे क्या बन रहे हो का क्या मतलब? जरूरी है शरीर रहते रहते हमारी ऐसी चीज हो जाएगी आपकी चीज सदाकाल की कि हम सदैव सुख का अनुभव करेंगे दुख का अनुभव नहीं करेंगे। तो हमारे लिए हमारा वाइब्रेशन हमारे संगीत साथी सब सुखदायी होंगे, हमारा हिसाब किताब पूरा हो चुका होगा, हमारे कर्मों का बंधन खराब हो चुका होगा। जो भी आत्माएं हमारे संसार के संपर्क में आने वाली होगी वो कर्म संबंध में आने वाली होगी, सुख के बंधन में आने वाली नहीं। ऐसी स्थिति हमको सही रहते ही बनानी है। निराकार परम पिता परमात्मा वो ज्ञान का सागर है, वो ऐसी स्थिति की साधन पर बनाता है, हमारे अंदर ज्ञान की ऐसी पराकाष्ठा पैदा करता है कि हम अपनी ऐसी स्थिति ऐसा वायुमंडल ऐसा संगठन बनाएंगे तैयार कर ले कि हमको सुख देने वाली आत्माओं के संसर्ग संपर्क में आ नहीं सको। तो परमात्मा भी ज्ञान का सागर है, उनको आना पड़ता है परंतु वो सुना नहीं, कैसे कैसे सुना रहे बिना शरीर के, कैसे मैं इस शरीर में आया हुआ, मेरा नाम ही पार्थ है, मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ, आधार लेता हूँ प्रकृति, प्रतिमाना कार्य और प्रमाना प्रत्यक्ष है, एक तो होता है साधारण कार्य और एक होता है प्रत्यक्ष कार्य, कार्य माना रचना जो प्रकट की रचना है वो रचना कब रची गई होगी, प्रकट की रचना है तो जरूर प्रकट रूप से उस रचना की रचना की शुरुआत भी तो कभी की गई होगी, कभी तो रची गई होगी, जरूर संगम पर ही आकर के मैं प्रकृति उस रचना का निर्माण करता हूँ, रचना को तैयार करता हूँ। पांच तत्वों को तैयार किया जाता है क्या, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश इन पांच तत्वों को बनाया जाता है क्या? पांच तत्व नहीं बनाए जाते, लेकिन पांच तत्वों का जो सर्वश्रेष्ठ पुतला है वो पुतला तैयार किया जाता है, उसको कहते हैं प्रकृति। मैं स्वयं पुरुष हूँ उसकी कहा जाता है, पुरी में जो शयन करता है शरीर रूपी पुरी में जो शयन करता है वो आत्मा ही पुरुष है, प्रथम पुरुष है। और उसने जो पहली पहली रचना रची रचने रचने वाला रचयिता कहा जाता है, रचयिता ही पिता है, जो जगत पिता है सारे जगत का है, सब मनुष्य मात्र का पिता है, उसका कोई पिता नहीं, कोई मनुष्य उसका पिता नहीं हो सकता, वो जगत पिता पहले किसी रचना करता है, जगत माता की रचना करता है, बनाता है, विचार करता है कि तुम मेरी हो तो मैं प्रकृति का आभार लेता हूं। यह जो पहले नंबर का है इनके ही बहुत जन्मों के अंत में आकर के प्रवेश करता हूं। यह बात सुप्रीम कोर्ट के लिए ये बात लागू होती है क्योंकि आत्माओं का पिता है, वो आत्माओं का पिता मनुष्य आत्मा में जो पहली आत्मा है प्रजापिता उसके तन का आभार है, वो तो हुआ मेरा का सुप्रीम कोर्ट भगवान, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तन में आता है और साकार करिए होते हुए भी मेरा का विशेष का पाठ बनाता है, वो भी जरूर किसी का आभार लेता हो, रचना रचने के लिए दूसरा जरूर चाहिए जगत पिता किसका आभार लेगा, जरूर जगत माता का आभार लेगा, प्रकृति नाम रखा हुआ है प्रत्यक्ष रचना प्रत्यक्ष प्रति, तो जरूर सबसे पाव पूरी हो, जो सबसे पावर प्रति है रचना है उसके द्वारा प्रति स्थापना करता हूँ, बोला ब्रह्मा के द्वारा सूरज की स्थापना करता हूँ, ब्रह्मा ने तो मेरे बोल दिया, ये भी बोला है कि मैं माताओं के द्वारा स्वर्ग का गेट खुलवाता हूँ, माताएं स्वर्ग की स्थापना में देश विदेश में सहयोगी बनती है, तो जरूर कोई इसकी बोला है जो स्वर्ग की स्थापना में विशेष सहयोगी बनता है, वो जगत माता कही जाती है, तो ये जो पहले नंबर का है इनके ही बहुत जन्मों के अंत में आकर के मैं प्रवेश करता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट प्रवेश करता है शरीर में, पहला जो आत्मा पहली आत्मा मनुष्य आत्माओं का जो पिता और मनुष्य आत्माओं का जो पिता है जगत पिता, वो पिता का बेटा है जगदम्बा का, तो वो तो प्रवेश करता है सुप्रीम कोर्ट, ये कैसे प्रवेश करता है, ये प्रवेश करता है दिल और दिमाग में, दिल और दिमाग में ऐसा खड़ कर जाता है, वो स्थिति ऐसी जम जाती है जिस स्थिति के आधार पर कार्यक्रम संपन्न होता है, तो जब मैं प्रवेश करता हूँ तो इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, क्या नाम रखता हूँ, ब्रह्मा, ब्रह्मा बड़ी माँ, छोटी माँ नहीं, बड़ी माँ, बड़ी माँ माने जिसकी कोई भी माता नहीं होती, वो सब की माता है लेकिन उसकी कोई भी माता यदि आयु ऐसे नहीं कि ब्रह्मा दादा देख रहा है ओरिजिनल ब्रह्मा था, नहीं ओरिजिनल नहीं था, उसको रखा हुआ था आयु बनाने के लिए, बोला भी है मुझे ये तन को बोल चुका है कन्या माता की कैसे सवाल करेगा, तो निमित्त किसको बदल दिया उसको, उस समय माता के रूप में निमित्त किसको बदलना पड़ा, सरस्वती ओम राधे को निमित्त बनाना पड़ा, हाँ ओरिजिनल ब्रह्मा नहीं था कैसेधारी ब्रह्मा था, सरस्वती भी ओरिजिनल माता नहीं थी कैसेधारी माता थी, वास्तव में जो आदि में था वही अंत में से प्रत्यक्ष होता है, एवरलास्टिंग। तो यदि एक आदमी है जिसके माता के थ्रू ब्रह्मा को अपने साक्षात्कारों का ज्ञान हुआ, उनको ये पता चला कि मैं किसी की छोर हूँ, वही माता तेरी छोड़ने के बाद दूसरा जन्म लेकर के फिर साक्षात जगदम्बा का पाठ कर जिस जगदम्बा के चित्र संसार में पूजे जाते हैं, ब्रह्मा का रूप नहीं पूजा जाता, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनाए जाते, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनाई जाती, सिर्फ पितरों का राज है। मंदिरों में मूर्ति स्थापित करके जगदम्बा की पूजा होती है, तो वो जगदम्बा आधार बनती है। उसके दिल और दिमाग में कौन सा तत्व बनाया हुआ रहता है? बिंदु 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 बनाया हुआ रहता है नहीं? सुप्रीम कोर्ट जो भी बिंदु से किसी बुद्धि में समाया हुआ होगा तो स्टेट कैसी होगी? कैसी स्टेट होगी? धर्म के काम की स्टेट कैसी होती है? निराकारी स्टेट होती। वो निराकारी स्टेट ये साबित करती है कि एक बिंदु के अलावा इनको और कोई भी होती नहीं। तो ब्रह्मा का जो रूप है, चाहे दादा लिख रहे राज का हो और चाहे जगदम्बा का हो, उसकी निराकारी स्टेज नहीं दिखाई जाती। माता होती है साकार, साकार होते हुए भी कोई साकार रूप में परमात्मा का स्वरूप है जो उसकी बुद्धि में समाया हुआ होता है। तो पहले ये सब भक्ति में थे, उस समय बहुतों के नाम ले लिए, परंतु बहुतों ने फिर छोड़ दिया, नाम बेकार हो गए, इसलिए नाम देना बंद कर दिया। अभी जो नाम देते हैं वो काम के आधार पर पक्के पक्के नाम दिए जा रहे हैं, ऐसे दिए हुए नामों को कोई उखाड़ नहीं करता। अभी जिसका नाम जगदम्बा दिया गया वो पत्थर की लकीर है, उसे हटाया नहीं जा सकता। तो पहले जो नाम दिए उन्होंने तो छोड़ दिया है, इसलिए नाम रखने से फायदा नहीं, नाम रखने ही बंद कर दिया। तुम अगर उस समय के नाम देखो तो बंद रखाओगे, एक ही साथ सब इकट्ठे कितने रमणीक नाम आ गया। संदेशी नाम लेकर के आती थी, वो नामों की लिस्ट भी जरूर रखनी चाहिए, रखी है या नहीं रखी है वो अलग बात है, लेकिन बाबा ने डायरेक्शन दे दिया कि वो संदेशी के द्वारा लाए हुए नामों की लिस्ट जरूर रखनी चाहिए। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो उनका भी नाम बदल जाता है, क्यों? ये एक ऐसा विवाद कहती है, जरूर तर्म से विवाद शुरू होती है, जो तन से मन से धर्म से समय से संपर्क से और संपत्ति होती आत्म से हो जाता है, उनका इस संसार में कुछ भी है सब कुछ अलौकिक हो गया, तो नाम भी बदलना। परमात्मा बाप के प्रति जो बच्चे पूरे सरेंडर हो जाते हैं, मन भी पूरा अर्पण हो जाता है, तो जिस समय ऐसी स्थिति आती है संपूर्ण अर्पण में होने की, उसी समय उन आत्माओं के अपनों अपने स्वरूप का बोध होने लगता है, हू एम आई, ये प्रत्यक्ष हो जाता है। और जब तक कहीं न कहीं कोई न कोई लगाव लगे हुए हैं तब तक नाम क्लियर नहीं हो सकता, चाहे वो देवता शंकर हो, चाहे जगदम्बा हो, चाहे सीता हो, कोई भी देवता या देवी क्यों न हो, उनका नाम तब तक क्लियर नहीं हो सकता जब तक कि वो संपूर्ण आत्मा में नहीं हुई। संपूर्ण अर्पण में होना माना दर्पण पाव रूप बन गया। उस आत्मा के स्वरूप से उनके चरित्र से उनकी चरण से पहले पहले आत्मा को बोध होने लगेगा। इन आत्माओं पर यही बात है। तो सन्यासी जब सन्यास करते हैं तो उनका भी नाम बदल जाता है, बर्बाद छोड़ देते हैं। तो वो कोई छोड़ देते हैं, दूर रूप में छोड़ने की बात नहीं है। तो कैसे छोड़ते हो? बुद्धि से लगाव छोड़ते हो। तुम आकर के प्रैक्टिकल में ब्रह्मा के बनते हो, फिर ये तो हो ही हो क्या? फिर के तो सदैव हो ही हो। तुम कहते ही हो बाप दादा। सन्यासियों का ऐसे नहीं होता। कैसे कि जिसके प्रति वो अर्पण में होते हैं वो बाप भी हो और उनका दादा भी हो, परिणाम बदलते हैं। परंतु बाप दादा उसको नहीं मिलता। और तुमको तुमको बाप और दादा दोनों एक संग में मिल जाते हैं, कंबाइंड मिलते हैं। उनको सिर्फ गुरु मिलता है, सदगुरु नहीं मिलता। क्या मिलता है? गुरु मिलता है। सदगुरु मिला का एक कहा जाता है, सबका सदगुरु से भगवान एक ओंकार निरंकार सदगुरु अकार कहा जाता है। एक हो गया सदगुरु तो बाकी गुरु क्या हो गए? एक है सब तो मानव सच्चा सच्चा गुरु, तो बाकी क्या हो गए? बाकी हो गए तो झूठे गुरु। तो वो सतगुरु है वो तुमको मिलता है। उन सन्यासियों को सदगुरु नहीं मिलता, उनको सिर्फ मिलते हैं झूठे गुरु। आदि योगी हद के सन्यासी और राजयोगी है बेहद ही इन हाथे के सन्यासियों में और बेहद के सन्यासियों में रात हिस्सा करते हैं। गया भी आता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। असली ज्ञान जब मिलता है तो भक्ति की बातों से वैराग्य आ जाता है। माना अन्य सत्कालिक बातों से कामों से वैराग्य आ जाता है। उन सन्यासियों का भी वैराग्य, परंतु उनका है धर्मार्थ वैराग्य। और तुम्हारे सारी दुनिया से वैराग्य, उनको तो पता ही नहीं है कि सृष्टि बदलने वाली है। इनको बाहर की दुनिया की सन्यासियों को, सिर्फ बाहर की दुनिया की सन्यासियों को पता नहीं कि सृष्टि बदलने वाली है। ब्राह्मण की दुनिया में भी ऐसी सन्यासी है जिसको पता ही नहीं है कि हम सृष्टि बदलने वाली है। उनको इस बात पर विश्वास नहीं है।